اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں شبیر رضوی آپ کا ہوسٹ، یہ پروگرام فکر و نظر ساحر ٹی وی سٹوڈیوز لندن سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج ناظرین ہماری گفتگو رہے گی کہ طلاق اور طلاق کے ڈیورس کے تعلق سے سماجی اثرات کیا ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک طرف تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کا طلاق ہو گیا اور پھر بچے ہیں، بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، سوسائٹی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. جنرلی ڈیورس ایک ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے لیے مفید نہ ہو. اس گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آج دوست ہمارے موجود ہیں. ایک تو ہمارے ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب ہیں جو ایک سولیسیٹر، اکیڈیمک رائٹر، لیکچرر اور براڈ کاسٹر اور ایڈوائزر ہیں کافی چیریٹیز کے یہاں پر یو کے میں. السلام علیکم طاہر بھائی، خوش آمدید. اور ہمارے دوسرے محترم عزیز مولانا سید محمد سبزواری صاحب ہیں جو یو کے میں تقریباً 40 سال سے کمیونٹی کی خدمات کر رہے ہیں. وہ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں، اکیڈیمک اور انٹرنیشنل اسپیکر. اس کے ساتھ جو ہے ایک چیریٹی اور کئی چیریٹیز کے بانیوں میں سے ہیں، الاثر انسٹیٹیوٹ کے نام سے یوتھ ایکٹیویٹیز. وہ جو ہے کئی برس سے یہاں پر یوتھ کی اور ینگسٹرز کے لیے اسلامی اور دوسری ایجوکیشن فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب، خوش آمدید. آغا صاحب، جو میں نے کوشچن شروع میں ناظرین کے سامنے پیش کیا کہ طلاق تو ایک طرف ہوتا ہے، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسئلے مسائل تھے میاں بیوی کے دوران ختم ہو گئے، مگر اگر بچے ہوں، اگر بچے نہ بھی ہوں، تو یقینی طور پر جو کپل طلاق ہوتے ہیں ان پر بھی سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہوگا. اس کا پھر سوشل امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر بچے ہوں تو بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو سماجی تعلق سے طلاق سے کیا اثرات ہوتے ہیں آغا صاحب سوسائٹی میں؟
دیکھیں، انسان جب شادی کرتا ہے تو وہ اپنے آرام و راحت کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے سکون کے لیے کرتا ہے، اپنی غرائز جنسیہ کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے. تو جب طلاق ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں اسے نہیں ملیں گی، اور جب یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی تو سب سے پہلا امپیکٹ، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ جو ہے ایک نفسیاتی مریض سے ہو جائیں گے. اور یہ نفسیاتی مرض جو ہے خود ایک لعنت ہے. یعنی وہ ان کے کام میں بھی حرج ہوگا، ان کے روزمرہ کی زندگی میں حرج ہوگا، ان کے جسمانی طور پر اس کے افیکٹ ہوں گے. طلاق کے بعد یہ مضمرات ہیں، یعنی یہ تمام وہ خطرات ہیں کہ جو طلاق کے بعد پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب انسان کی غرائز جنسی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ انسان جو ہے فحاشی کی طرف جاتا ہے اور زنا کی طرف جاتا ہے، پھر ناجائز اولادیں ہوں گی. اس کے بعد جب خاندان ٹوٹا تو خاندان میں جو ہے دوسرے معاشرے کے لوگ اس کا طانہ دیں گے ان کو. اور یہ اس طرح سوسائٹی میں ایک ہر جو مرج ہوگا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے اسلام نے یہ کہا ہے کہ طلاق نہ دو، اور کوشش کرو کہ کسی طرح آربیٹریشن ہو جائے، کسی طرح صلح ہو جائے، صلح صفائی ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں طلاق کے بعد پیدا ہوں گی.
جی آغا صاحب نے یعنی کہ اسلامی نظریے سے بہت یعنی کہ لمبا ٹاپک ہے، اس کو خلاصے پر اور بہت خوبصورتی سے پیش کیا. طاہر بھائی، تو سوشل امپلیکیشن جیسے ناجائز اولاد کا ہے یورپ میں، خصوصاً یو کے میں فیکٹس وہاں پر کافی واضح ہیں کہ 60% اولادیں، یعنی کہ غیر مسلم کی میں بات کر رہا ہوں، 60% اولادیں جو ہیں ناجائز یہاں پر ہوتی ہیں. تو اس کا آبویسلی سوشل امپلیکیشن ہوتا ہے کہ اگر ون پیرنٹ فیملی میں جہاں پر ماں صرف دیکھ بھال کر رہی ہے اولاد کی، اور کوئی مرد گھر پر نہیں ہے، کوئی فادرلی فگر یا مین فگر نہیں ہے، تو اس کے اثرات یقینی طور پر سوسائٹی پہ ہوتے ہیں. اگر اسلام میں طلاق کو معیوب سمجھا گیا، نہ صرف معیوب سمجھا گیا یعنی کہ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ بہت ہی بری چیز ہے، آلدو اجازت ہے مگر مناسب نہیں ہے، تو سوشل امپلیکیشنز کو کم کرنے کے لیے तलाक को हम कोशिश करें कि ना हो सोसाइटी में ज्यादा, क्या ख्याल है आपका?
हाँ, एक तो थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी की ज़रूरत है। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नाजायज़ औलाद, मैं नहीं समझता कि मुसलमानों में ये प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यूरोप का जो मसला है, उनका अपना कल्चर है, नाजायज़ औलाद उस औलाद को कहा जाता है आम इस्तेलाह में, जो शायद इस्लामी शायद ना हो, जो आप ना चाहते हों और पैदा हो जाए। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हों और वो औलाद ना चाहते हों तो पैदा हो जाए, आप उसको इस्लामी तो कहेंगे, शायद नाजायज़ वो भी रहेगी।
इंटरेस्टिंग पॉइंट,
तो
वेरी इंटरेस्टिंग
ये
पॉइंट,
एक बड़ा सेंसिटिव मसला है, इस पे हम काफ़ी दकीक बात की ज़रूरत है। इस पे
सही।
नाजायज़ औलाद हर वो औलाद है जो माँ बाप ना चाहते हों और वो पैदा हो जाए, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल चीज़ है। लेकिन आप और हम यहाँ जानते हैं कि इस मुल्क में औलाद चाहे जायज़ हो या नाजायज़, अगर आप खुद भी उसके साथ ज्यादती करना चाहें तो यहाँ सरकार के इतने शदीद कवानीन मौजूद हैं कि वो बच्चे के साथ आसानी से ज्यादती नहीं होने देते। तो जो यहाँ सिंगल पेरेंट्स हैं या जो स्टेप फादर के पास जाते हैं या स्टेप मदर के पास जाते हैं, तो कानून ने इतना मुहासबा शदीद किया हुआ है उनका कि उनके लिए आसानी नहीं है कि वहाँ पर ज्यादती हों। ये यकीनन है कि ज्यादतियाँ तो होती हैं, चूँकि इंसान है वो बेशुमार तरीके निकाल लेता है ज्यादती करने के, लेकिन कवानीन काफ़ी सख्त हैं। मुसलमानों में नाजायज़ औलाद के यहाँ पे इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे बच्चियाँ इस बात को समझते हैं कि अगर एक चीज़ को हम हलाल तरीके से कर सकते हैं तो हमें हराम में जाने की क्या ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जैसे कि आगा साहब फरमा रहे थे माशाल्लाह के शिया फिका में तो निकाह के लिए गवाहों की भी ज़रूरत नहीं है, तो अगर मुतलका औरत किसी आदमी से ताल्लुक़ जोड़ना चाहे और वो शादी करना चाहें तो वो शादी कर लेते हैं। और आमतौर पे मौलाना साहब को भी इल्म है, अगर मैं भी जानता हूँ बेशुमार, कि हमारे मौलाना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, निकाह पढ़वा देते हैं, इसलिए कि वो नाजायज़ चीज़ को रोकना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल ये हमारे पास रैम्पेंट प्रॉब्लम नहीं है नाजायज़ औलाद का। लेकिन जहाँ तक सिंगल पेरेंट्स की बात है, तो माँ बाप से बेहतर तो औलाद की तरबियत कोई नहीं कर सकता।
सही,
उस नज़र से बाप जो उसका बायोलॉजिकल फादर है, जिस नज़र से अपनी औलाद को देखता है, उस नज़र से तो कोई स्टेप फादर उसको नहीं देख सकता। हालांकि ये अखलाकी तौर पर गलत बात है, मैं समझता हूँ ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। आपकी नज़र में भी शायद गुजरे होंगे ऐसे लोग, मेरी नज़र में गुजरे हैं, कि जहाँ 20-20 साल बाद औलाद को बताया गया कि असल में तुम्हारा बाप ये था, तो उनकी वही फीलिंग जनरेट हो गई जो ओरिजिनल थी। अब उसको आप कहते हैं खून की हरकत हरारत है, यह वो बुनियादी तौर पर अपने आप को साइकोलॉजिकल यकीन दिलवाना होता है कि ये आपकी है। जो ही वो साइकोलॉजिकल यकीन आपके अंदर पैदा होता है, आपकी उससे मोहब्बत जाग चुकी होती है। मैं समझता हूँ एज ए इंसान मैं तमाम बच्चों को अपने बाप की नज़र से कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन जो ख्वाहिश है वो ये है कि बच्चों के मैं हर बच्चे का बाप हूँ जो मेरे बच्चे की उम्र का है, और मेरी बीवी हर बच्चे की माँ है जो उसके बच्चों की उम्र की है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन चूंकि ये है तो हमें इसे तस्लीम करना पड़ेगा कि बच्चों पर इसके बुरे असर यूँ पड़ते हैं कि हम मेंटली ट्रेन नहीं हैं किसी दूसरे बच्चे को पालने में, और बच्चा अपनी एसोसिएशन उस बाप के साथ और उसी माँ के साथ उस तरह से नहीं पैदा कर सकता जिस तरह से वो अपनी माँ और बाप के साथ पैदा कर सकता था जो उसके सगे बाप थे। तो सबसे बुरे असरात, जैसा कि आगा साहब ने फरमाया, बच्चों पर पड़ते हैं, और वो बच्चे जो हैं वो एक टूटी हुई पर्सनैलिटी लेकर पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, जवान होते हैं, और जब वो टूटी हुई पर्सनैलिटी लेकर बड़े होते हैं तो उनके लिए भी फिर अपना घर बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह फिर वो सुकून हासिल करने के लिए, ऐसा खासा फरमा रहे थे, जब उन्हें नहीं मिलता तो वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, वो जो है और बुराइयों की तरफ और गुनाह की तरफ जो है वो भाग चले जाते हैं। तो यकीनन जो इसका सोशल इम्प्लिकेशन है वो सबसे शदीद जो है वो बच्चों की ज़िंदगी पर है। और जहाँ तक उनका अपना ताल्लुक है कपल का, तो बेशक सेपरेशन कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, कोई भी शख्स जो है आसानी से सेपरेशन को पसंद नहीं कर सकता। जिसको एक अच्छा जोड़ा बन रहा हो जहाँ, तो उस जोड़े को कोई जोड़ा जो उसको सुकून मिल रहा हो वो उसको आसानी से तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर बदकिस्मती से वो टूट जाए तो यकीनन दोनों जो हैं, जैसे कि आगा साहब ने फरमाया, कि वो नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। अगर उनमें मोहब्बत थी और उस मोहब्बत के होते हुए वो एक दूसरे से किसी वजह से टूट गए, लेकिन अगर उनमें मोहब्बत ही नहीं थी और वो टूट गए, तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए यही बेहतर है कि वो हालत सुकून में रहें। चूँकि जैसा कि ये कुरान मजीद की आयत है कि शादी करो ताकि तुम्हें एक दूसरे से सुकून मिले, लफ्ज़ सुकून इस्तेमाल किया है। मैं इसकी एटोमोलॉजी में नहीं जा सकता, फिर किसी वक्त बताऊँगा कि सुकून किसे कहते हैं। लेकिन अगर सुकून नहीं है शादी में तो पर्पज़ ऑफ मैरिज इज़ डिफीटेड,
कुछ कोई फायदा नहीं यानी कि।
हाँ, अब वो जब पर्पस ही डिफीट हो गया है तो फिर सुकून के लिए अलहदगी, हालत सुकून को हासिल करें तो वो उतनी ही बेहतर है। तो उसके बाद खुदा बेहतर करे उन जोड़ों के लिए कि उनको वो लोग मिल जाएं जो उनको वो सुकून दे सकें जिसके लिए शादी हो जाए।
अब साहब तो यहाँ पर यही बात होती है, अगर शादी में सुकून ना हो
जी
और अगर औलाद पैदा होती है, जैसे ताहिर भाई एज अ लॉयर यानी कि बहुत ही अच्छा नुक्ता निकालते हैं वो, यानी कि इवन मैरिज में हो सकता है कि वो नाजायज औलाद हो, यानी कि अगर सुकून ही ना हो फैमिली में, ठीक है इस्लामिकली रिलीजियसली लीगली लेजिटिमेट चाइल्ड है वो, मगर इमोशनली अगर देखा जाए उसको तो इट्स नॉट अ लेजिटिमेट चाइल्ड। तो उस बच्चे पर भी यानी कि अगर मियाँ बीवी एक साथ रहें और झगड़ा फिसाद होता रहे और खुशी ना हो, एक दूसरे से राजी ना हो, तो वो औलाद भी तो उसी तरह से सोशल प्रॉब्लम बन सकती है या नहीं आगा साहब?
जी, वो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि शादी जो है वो सुकून के लिए होती है, लेकिन एक और मकाम पे ये है कि सुकून जो है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी सुकून जो है वो जिक्र इलाही से इंसान हासिल कर सकता है। यहाँ यही जैसे मैंने पहले कहा कि मारिफत की कमी है, यानी वो जिक्र इलाही जो है शादी के बाद बिस्तर पर सोना या आपस में रिलेशन कायम करना अंडर द सबमिशन ऑफ अल्लाह, अल्लाह की इताअत में, यानी वो भी एक जिक्र है, यानी वही फेल जो यानी शादी के बिना अंजाम दे रहे थे वो गुनाह था, और अब अल्लाह की सबमिशन में आकर यही फेल जो है ये सवाब का हामिल हुआ और सवाब के साथ सुकून का हामिल हुआ। तो ये सुकून उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक अल्लाह की सबमिशन ना हो। और ये जितनी भी तलाक़ें होती हैं या जो तलाक के मुजमिरात हैं, ये उस इलाही सोच से दूरी का नतीजा है, यानी बंदगी से दूरी का नतीजा है, यानी शादी के बाद तो इंसान को और ज़्यादा बंदगी मिलती है, इस वजह से कि रसूल अल्लाह का इरशाद है कि अगर किसी ने शादी की तो उसने अपना निसफ ईमान बचा लिया, अब वो निसफ ईमान दूसरे की जरा फिक्र करे। तो ये शादी जो है उसका ईमान बचाती है, शादी जो है उसको सुकून की तरफ लाती है। तो ये सुकून जो है उसको मारिफत के साथ होगा, और ये मारिफत के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने मुआशरे में हमारे जो दानिशमंद हज़रात हैं, हमारे जो उलमा हैं, वो अवेयरनेस करें कि शादी के क्या फ़वाद हैं, तलाक के क्या नुकसान हैं, और फिर ये है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये
सही
दो ऐसे फैक्ट हैं कि जो यानी ज़रूरी नहीं, उलमा पर ज़रूरी नहीं है, ये हर माँ बाप पर भी फ़र्ज़ है, बहन भाई पर फ़र्ज़
सही
है, बहन भाई को अमर बिल मारूफ करे, बेटा जो है वो अगर वालदेन यानी गलत सोच रख रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं तो यानी औलाद उन्हें यानी अवेयर करे।
और सब ब्रेक लेना होगा हमें इस
जी
वक्त, इजाज़त दें, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी।
गफलत में डूबा दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे या मौला। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटू, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। मौला या मौला, रहूं बैठा मैं अपना सर झुका سرور سا عطا کر دل بدل دے مولا یا خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا یا مولا خدایا فضل فرما دل بدل دے.
ناظرین دوبارہ پروگرام اب شروع کرتے ہیں فکر و نظر. ہماری گفتگو ہو رہی تھی آج کے آیا کے طلاق ہونے کی بنا پر سماج پر سوسائٹی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. آغا صاحب وقفے سے قبل آپ فرما رہے تھے کہ یعنی کہ ہمیں جو ہے خداوند کریم کہ وہ فرمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس میں جو ہے چاہے ویسٹ میں مسلمان رہتے ہوں یا ایسٹ میں رہتے ہوں مسلمان بہرحال یعنی کہ جو کانسیپٹ ہے خداوند کریم کا وہ تو ایک ہی ہے ہر جگہ. تو وہ کانسیپٹ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں, کیا اس کے ریزنز ہیں کہ ہم سوسائٹی جو ہے بہت مٹیریلسٹک بن گئی ہے, ہر چیز جو ہے ہم پیسے اور دولت سے میجر کرتے ہیں. اور خدا ٹھیک ہے ہم ویسٹ کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ خدا میں یقین نہیں رکھتے, مگر اصلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم بھی خدا میں یقین نہیں رکھتے, ہم بھی جو ہے پیسے اور دولت میں یقین رکھتے ہیں. تو اس کا میرج پر اور اس پہ تو امپیکٹ ہوتا ہوگا صاحب.
دیکھیے چونکہ موضوع ہمارا طلاق ہے تو اور اس کے مضمرات, میں ایک چھوٹی سی مثال پہلے نماز کی دے لوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں, اور خود انسان جو ہے مقایسہ کر سکتا ہے کہ بعض دفعہ انسان نماز جلدی میں پڑھتا ہے اور بعض دفعہ اس کا نماز میں بہت دل لگتا ہے. تو یہ جو طلاق کے مسائل ہیں یہ شادی قبلہ خضوع اور خشوع کے ساتھ یعنی صحیح معرفت کے ساتھ صحیح سبمیشن کے ساتھ نہیں ہوتی, چونکہ بیس جو ہے غلط ہوتا ہے اس کو سمجھا نہیں جاتا, تو اس بنا پہ جو ہے طلاق کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ماہوں کے بعد یا ایک سال کے بعد جو ہے طلاق ہو جاتی ہے. تو اس شادی کے سکول کو یا شادی کے اس فریضے کو خضوع و خشوع کے ساتھ اور انڈر دا سبمیشن آف اللہ انجام اگر دیں گے اور اس کے بعد جو مشکلات آئیں گی ان مشکلات میں صحیح ایڈوائز لیں گے. ایڈوائز جو ہے وہ صحیح نہیں ملتی, یعنی معمولی معمولی سے اختلافات پر ماں باپ جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں, تو یہ والدین کی انٹرفیئرنس والدین کے اعتراضات بھی یعنی اس میں حائل ہوتے ہیں.
صاحب جو میں سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں طاہر بھائی کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ میں مٹیریل ویلتھ اتنی زیادہ نہیں ہے, مگر وہاں پر بھی اکثر یہ دستور ہو گیا ہے کہ بچہ جو ہے گریجویٹ ہو جائے جاب مل جائے تو شادی کو ڈیلے کیا جاتا ہے, تو وہاں بھی ہم میجر جو ہے مٹیریلزم کو بنا رہے ہیں. تو یہاں پر جو ڈیورس ہوتے ہیں اور اس کے جو اثرات سوسائٹی پہ ہوتے ہیں وہ یعنی کہ ایک قسم سے ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایوری تھنگ از میجرڈ بائی ویلتھ اینڈ اسٹیٹس, تو اگر کوئی وہ اسٹیٹس میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو ڈیورس ہو جاتا ہے, صحیح ہے. تو اس بنا پر ہم شادی کو پراپرلی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟
شکریہ شبیر بھائی. نہیں, تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ اس کو اسٹیٹمنٹ کو میں سے کہوں گا, اگر کوئی اس میئر پر فٹ نہیں ہو رہا میٹیریل تو شادی نہیں ہوتی, چونکہ شادی سے پہلے میئر انسان دیکھ لیتا ہے کہ کیا میئر ہے. ڈیورس کی جو وجوہات ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں بہت غریب ہو جائیں یا دونوں کو معاشی طور پر جو ہے برے حالات ہو جائیں, میاں یہ سمجھے کہ میں اپنی بیوی کو پالنے کے قابل ہی نہیں ہوں, بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, یا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, عورت بیچاری کام بھی کرتی ہے اور بچے بھی پالتی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ تو مجھ پہ الٹا برڈن بن گئے ہیں کہ میں کام کروں. تو ڈیورس کی وجوہات اور شادی کی مختلف ہیں. جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ جو مٹیریلزم ہے وہ کس حد تک اس میں انوالو ہے, مٹیریلزم اس حد تک انوالو ہے کہ अगर घर में पैसा नहीं आएगा तो नाचाकी बढ़ जाएगी, और जब नाचाकी बढ़ेगी तो मुस्तकिल नाचाकी से अल्टीमेट सूरत हाल डिवोर्स की होती है। आगा साहब बड़ी अच्छी बात फरमा रहे थे जब सुलह की बात कर रहे थे, मैं उस हदीस को याद करवाना चाहूँगा आपके नाज़रीन के लिए भी, चूँकि मैंने पढ़ी और मैं बड़ा उससे इंस्पायर हो रहा हूँ, कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम किसी शख्स से कह रहे थे कि देखो किसी झगड़े में अगर तुम झुक जाओ तो उस झगड़े की वजह से मुस्तकिल ला ताल्लुकी से बचना झुक जाने से बेहतर नहीं है। तुम झुक जाओ और तुम्हारी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उस ताल्लुक को बना लो। तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन रहे थे, तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि झुकने से अगर तुम्हारी इज्जत में कमी हो तो वो इज्जत कयामत के दिन मेरी इज्जत से ले लेना। हमारे यहां तो ये है झुकने और सुलह का मियार, कि हम समझते हैं कि मियां बीवी का रिश्ते को सब कॉन्टिनेंट में भी नक कटा रिश्ता कहा जाता है, कि नाक नहीं होती इस रिश्ते में, सही। ना मियां की ना बीवी की, वो एक दूसरे को कोई बात कही हो ही उसके बाद वो बिल्कुल दो तीन दिन गुजरे और वो बिल्कुल ठीक हो गए। इसीलिए कलाम पाक में जो फैमिली लॉ से मुतल्लिक आयात हैं, अगर आपके नाजरीन उन पर आज के इस प्रोग्राम के बाद जाके नजर करें तो आपको महसूस होगा कि वो बाद में कवानीन बनी, चूंकि वो कुरान खुद एक कानून की किताब है इस हवाले से, कि वो इंसान के दिल और दिमाग से एड्रेस करती हैं, इखलाक से एड्रेस करती हैं। वो जो बाउंड्रीज बनाती हैं वो इखलाकी बाउंड्रीज बनाती हैं। और आप यकीन कीजिए और एक्सपेरिमेंट करवा दीजिएगा अपने क्लाइंट्स को, मैं करवाता हूं, कि अगर वो चाहे शिया हों, सुन्नी हों, किसी भी मजहब के लोग हों, अगर वो कुरानी तरीके से फैमिली लॉ पे अमल करें तो बखुदा 95% उनका घर बच सकता है। और उसकी मिसाल मैं ये दूंगा, कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हारी इन बीवियों से नहीं बनती इस वजह से कि वो खूबसूरत नहीं है, इस वजह से कि उनमें कोई बुराई नहीं है, तो तुम्हें नहीं मालूम कि उनके अंदर और कौन सी अच्छाइयां हैं। तो एक तो ये इंसेंटिव है कि आप उनमें उस बुराई को जो आपको जाहिर नजर आ रही उसकी वजह से उनको मत छोड़ो, बल्कि वो इंसेंटिव देखो और उसमें जो अच्छाई है वो तुम्हें ना मिले। एक तो कुरान पाक ये फरमा रहा है, दूसरी बात ये कहता है कि अगर झगड़ा हो जाए तो माँ बाप के लिए मुहैया करो, एक आदमी तुम ले आओ और एक आदमी वो ले आए, वो बात करें। अच्छा, ये भी आपने कर गुजर लिया कि एक आदमी आपका आ गया माँ बाप की तरफ से, एक आदमी लड़के के माँ बाप से, उन्होंने आर्बिट्रेशन, उन्होंने कहा जी कि नहीं हमारी फिर भी नहीं बनती। फिर इस बात का ख्याल करो कि वो हालत नापाकी में ना हो, हालत तोहर में हो। अब फिर टाइम गुजर गया, आपने इंतजार किया, अब वो हालत पाकी में आ गई। अब जब वो हालत पाकी में आ गई, दो आदिल गवाह आ गए, आर्बिट्रेशन गुजर गई और आपने एक तलाक को प्रनाउंस कर दिया, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस बीवी को अपने घर से मत निकालो, उससे वो घर मत छीनो, उसको उस घर में रखो। तो खुद निकल जाओ अगर निकल सकते हो, उसका उस घर पे रिश्ता कायम रहता है। अब अगर उस घर में इद्दत उसने पूरी करनी है या 4 महीने 10 दिन वहां रहने हैं, तो आप यकीन कीजिए कि दोबारा एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि वो एक दूसरे की तरफ माइल हो जाएंगे और वो फिर वो तलाक डिसॉल्व हो जाएगी और वो रिश्ता कायम हो जाएगा,
बिकॉज ऑफ ह्यूमन
रिलेशनशिप। तो ये जो कुरान आपको बार बार कह रहा है, ये आपके दिल से गुफ्तगू कर रहा है, ये आपके इखलाकी नफ्सियात से गुफ्तगू कर रहा है। हम उसको बहुत स्ट्रिक्ट ब्लैक एंड व्हाइट कानून की नजर में देखते हैं कि ये बॉक्स टिक हो गया, एक आदमी उसका आगे का 2 मिनट बैठे बात, ऐसे नहीं है। वो एक उस तरह से देखें कि वो आपके उस अच्छे इंसान से जो आपके अंदर छुपा हुआ कुरान गुफ्तगू कर रहा है। तो क्या बॉक्स टिक करने वाली बात नहीं, क्या आपने इल्मी दिली तौर पर उस कानून पर अमल किया? अगर आपने दिली तौर पर वो तमाम कोशिशें कर ली तो 95% ये चांस है कि आपका रिश्ता नहीं टूटेगा और आप जुड़ जाएंगे आपस में। लेकिन हम उसको एक बहुत स्ट्रिक्ट लाइंस में ऑब्जर्व करते हैं, और जब स्ट्रिक्ट लाइन करते ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और हमारी डिवोर्स हो गई, तो इस वजह से वो डिवोर्स हो जाती है। लेकिन अगर कोई कुरानिक फार्मूले पर अमल करे और कुरान के आयली कानून पर अमल करे तो डिवोर्सेज 95% बच सकती हैं।
आगा साहब, ये बहुत ही पॉजिटिव यानी कि नजरियात ताहिबा ने पेश की। तो मैरिज में डिवोर्स को यानी कि अगर कम किया जाए और उसके सोशल इम्प्लिकेशंस को हम अगर निगाह पे रखते हैं अपने सामने, तो मैरिज में दोनों तरफ झुकना पड़ेगा, यानी कि मर्द को भी औरत को भी। और सेकेंडली उसके साथ साथ जो है जो यानी कि हर इंसान में बुरी क्वालिटीज़ भी होती हैं अच्छी भी होती हैं, वो जो ताहिर भाई ने फरमाया कि जो अच्छा इंसान, जो अच्छी चीज़ इंसान के अंदर है उसको उभारा जाए, उसको किस तरह से उभारा जाए साहब?
देखिए, ताहिर भाई ने बड़ी अच्छी झुकने की बात की कौले इमाम अली इब्ने अबी तालिब और रसूलुल्लाह से, चूँकि ये उर्दू का प्रोग्राम है और उर्दू नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो ये शेर जो है बहुत ही मुनासिब और बहुत ही यानी इस सोच की तरफ लेके जाने वाला है, जो अहले ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो अहले ज़र्फ होते हैं
हमेशा
झुक के मिलते हैं, सुराही जाम भरती है हमेशा सर नगुं होकर।
माशाल्लाह माशाल्लाह,
सुराही
जाम
भरती है
हमेशा
सर नगुं होकर। यानी जिस तरीके से ताहिर भाई ने एलिब्रेट किया है इस आयली निज़ाम को, कुरानी निज़ाम को, यानी कुरान यानी इलाही, बात वहीं आ जाती है, चूंकि इलाही सोच से लोग दूर हो रहे हैं, कुरान के मुताले से दूर हो रहे हैं, तारीख के मुताले से दूर हो रहे हैं, यानी इस वक्त यानी बजाय इसके कि शादी के बाद यानी वो मुस्तहबात या वो रिवायतें कि जो शादी के बाद इंसान को अंजाम देनी चाहिए वो तो नहीं देते, बल्कि वो हनीमून के लिए कोई इंडोनेशिया जा रहा है, कोई पेरिस जा रहा है, कोई अपने डिज्नीलैंड जा रहा है, यानी इस शादी के मुकद्दस फरीजे को समझने की कमी और उसकी मारिफत और इलाही सोच से दूरी का सबब है ये तलाक। और जहाँ तक झुकने का ताल्लुक है, चूँकि मैं कम्युनिटी में रहता हूँ, हमने ये देखा है, शायद ये इस मादी दुनिया का एक क्राइटेरिया बन गया है कि इंसान को अब झुकने की आदत नहीं रही। इंसान जो है यानी उसमें मैं शायद ये लफ्ज़ तो बहुत सकील है, यानी फिरौनियत टाइप की सोच जो है ये शायद मादियत ने या इस तरह मटीरियलिज्म ने जो है ये उसके दिल में डाल दी, और इसकी इस्लाम और कुरान सख्त मुखालिफत करता है। अफ वो दरगुजर, यानी जैसा सूरह तगाबुन में है कि ए ईमान वालों, तुम्हारे बाज औलाद और बाज बीवियां जो हैं वो तुम्हारी दुश्मन हैं, तो उनके साथ जो है सही तरीके से पेश आओ, उनको अफ वो दरगुजर करो और उनके साथ इखलाक के साथ पेश आओ।
बहुत बहुत
तो ये इखलाकी अकदार जो हैं इनकी कमी है, हमें जो है अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना
इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपका आए प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ यानी कि हाफ अ डजन प्रोग्राम किए जा सकते हैं इस टॉपिक पे, और इससे दूसरी बातें जो निकलती हैं, क्योंकि सोशल इश्यूज आर सो इम्पोर्टेंट, यानी कि पॉलिटिकल इश्यूज तो होते हैं मगर सोसाइटी पे इम्पैक्ट जो होता है इंडिविजुअल्स का होता है। इंशाल्लाह फिर और आपसे मुलाकात होगी किसी और। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शब्बीर रज़वी को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।